ఆత్మదర్శన్ స్వయం కదర్శన్ ఆత్మదర్శన్ స్వయం కదర్శన్ ఆత్మ జ్యోతి జగాలే బుజీ హుయి జగా కర జ్యోతి స్వరాజ ఫిర పాలే ఆత్మదర్శన్ స్వయం కదర్శన్
ओम शांति। प्रतिदिन बाबा हम सभी को साकार वाणी में एक पाठ रोज पक्का कराते हैं और उसी पाठ के स्पष्टीकरण के लिए आज हम सभी के बीच में उपस्थित हैं आदरणीय गीता बहन जी। हम सभी एक हाथ की ताली से बहन जी का अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। बचपन से ही आपने यह बाबा का ज्ञान प्राप्त किया, छोटी आयु में ही आपने अपने जीवन को यज्ञ में समर्पित किया। आप मैट्रिक गुजरात बोर्ड की परीक्षा में प्रथम क्रमांक लेकर सारे दक्षिण गुजरात में बोर्ड में प्रथम स्थान पर आए और तुरंत उसी वर्ष आपने यज्ञ को अपना जीवन समर्पित किया। आप सोचिए कितनी बड़ी एजुकेशन लाइफ के अंदर इतनी सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी जीवन को समर्पित करने का योग्य निर्णय आपने उस समय लिया। गुजरात के कई शहरों में आपने अपनी सेवाएं दी और उसके बाद 93 से लेकर के 2010 तक आप ज्ञान सरोवर के अंदर आवास निवास विभाग को सुचारू रूप से चलाते रहे। पिछले 5-6 साल से आप शांतिवन में हैं और जो भी देश विदेश से शिबिरार्थी आते हैं, बीके भाई बहने आते हैं, उनकी आप ज्ञान योग से पालना करते हैं। आप बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग के मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं। अच्छे वक्ता के साथ साथ आप एक अच्छे चिंतक भी हैं। आज का विषय है स्वस्थिति की महसूसता। आदरणीय गीता बहन जी, क्लास के बाद 7 से 7:30 बहन जी हम सभी को कमेंट्री से महसूसता कराएंगे भी, इसलिए पूर्ण रुचि से आज के विषय को हम सभी श्रवण करेंगे।
ओम शांति। मधुबन की तपोभूमि में आप सबकी तपस्या को देखकर हम भी अटेंटिव हो जाते हैं। कोई साइलेंस में रहता है तो हम भी साइलेंस में रहते हैं। ज्ञान का सार दादी सदा बहुत सामान्य रूप से, लेकिन जब भी मिलती हैं तो 3 बातें पक्का कराती हैं और हमेशा कहती है ना कि मैं 3 बार ओम शांति बोलती हूँ। दादी जानकी का तो अनुभव है ना सबको, और इसका अर्थ भी यही बताती हैं कि पहली ओम शांति माना मैं कौन, दूसरी ओम शांति माना मेरा कौन, और तीसरी ओम शांति माना मुझे क्या करना है। ज्ञान का सार यही है, उसी की गहराई में जाना है, उसे महसूस करना है और एक लंबे समय का अभ्यास उसके लिए है। रतन मोहिनी दादी भी अक्सर बताती हैं कि शुरू में हम घंटों एक ही नशे में बैठे रहते थे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। हमें होता था कि एक ही अनुभूति में घंटों कैसे बैठते थे, पर जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं, स्व में स्थित होते जाते हैं, तो ये अनुभव होता जाता है कि सच में स्व में स्थित होने में ही बहुत सुंदर अनुभूति है। बाबा ने पहला पाठ भी यही पढ़ाया और अंतिम पाठ भी यही है। संगम भर जो कुछ हम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अभ्यास करते हैं, सेवा करते हैं, नियम धारणाओं में चलते हैं, इन सब के द्वारा अल्टीमेट कहां हम पहुंचना चाहते हैं, स्व में। हम अपने आप में ही स्थित होने के लिए ये सारा करते हैं। शायद परसों ही बाबा ने साकार मुरली में कहा कि यही ऊंची मंजिल है देही अभिमानी बनना। जो स्व में स्थित रहता है, वो राइट डिसीजन ले पाता है। बाबा ने स्वयं की सत्यता को ही बताया। बाकी तो बाबा कहते हैं ना कि हिस्ट्री ज्योग्राफी वो तो विस्तार है और इस लोक की बात है। जो मूल सत्य बाबा ने बताया शुरू शुरू में, एक आत्मा का ही पाठ होता था बस, और 15 दिन तक वो लेसन चलता था। अध्यात्म की उत्पत्ति के लिए कहते हैं कि मानव मन में सबसे पहले ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि को हम, मैं कौन हूं। उसी का प्रत्युत्तर करने के लिए अनेकों ने चिंतन किया और अनेकानेक उत्तर निकले। सोहम, ब्रह्मोहम, शिवोहम, जिसने जैसा चिंतन किया, समझा, सत्य बाबा ने आकर बताया। बाकी सब ज्ञान मनुष्य आत्माएं बताती हैं। योग के बारे में आप देखते हैं, लंबी चौड़ी विधियां बताते हैं, पर मूल चीज किसको, किससे योग लगाना है, ये दो बात कोई भी यथार्थ नहीं बता पाए, और वो बाबा ने बताई। मूल सत्य सरल होता है, अधूरा ज्ञान कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए सबने उलझा के ही रखा, क्योंकि खुद को ही क्लैरिटी नहीं थी। और बाबा ने ये मूल सत्य कितना सिंपल रीति से बताया। हमें सत्य मिल चुका है, हमें सत्य खोजना नहीं है। बाबा ने एक बार विदेशियों को बताया था कि नया कुछ निकलना नहीं है, नेचर होता है ना कि और कुछ नया नया नया। बाबा ने कहा कि अब नया खोजना नहीं है, जो मूल और मुख्य है वो ऑलरेडी बाबा ने बता दिया है। अब है उनका स्वरूप बनना, उसमें स्थित होना। लंबा समय ज्ञान में चलने के बाद कई भाई बहनों को अब प्रश्न होता है कि अब क्या पुरुषार्थ कर, नियम में चल रहे हैं, नित्य अभ्यास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अब क्या करना है, अब क्या पुरुषार्थ करना है। अब उस स्थिति में जीना है। प्रथम ज्ञान मिला, अभ्यास किया, अनुभव में आया, अब वो स्वरूप में स्थित होकर जीना है। आज भी बाबा ने कहा कि निरंतर और नेचुरल, हमारी यात्रा संगम से सतयुग के ओर की है, जहां हम नेचुरल आत्मभिमानी है, वहां पुरुषार्थ में ही करना होगा, अभ्यास में ही करना होगा। वो नेचुरल ही हम आत्माभिमानी होंगे। तो संगम की हमारी अंतिम स्टेज, सतयुग की हमारी पहली स्टेज होगी। जिस स्थिति से संगम को एंड करेंगे उसी स्थिति से सतयुग को हम आरंभ करेंगे। तो जो हमारे स्वरूप की सत्यता है, रियलिटी है, वो हमें बार बार रियलाइज करना है। एक है नॉलेज, एक है महसूसता और एक है स्थिति। हमें अपना लक्ष्य बना लेना होगा कि सत्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य क्या है? सिर्फ ज्ञान से बुद्धि की झोली भरना है या समझ को स्वरूप में लाना है और एक स्थायी स्थिति बनाना। हम स्लैब भरते हैं तो कितने स्ट्रक्चर लगाते हैं, देखा है ना? मकान का स्लैब भरते हैं तो कितनी प्लेट्स और फिर कितने खंभे लगाते हैं, स्ट्रक्चर लगाते हैं। जब स्लैब फिक्स हो जाता है फिर स्ट्रक्चर निकाल दे। ज्ञान जीवन में फिक्स करना है। और जब तक ये फिक्स हो तब तक अभ्यास चाहिए। बाबा की एक मुरली चली है इसी महीनों में, रियलिटी से रॉयलिटी। ज्ञान का एक एक सत्य हमारे में रॉयलिटी, शालीनता, दिव्यता हमारे अंदर लाती। सत्यता से स्वच्छता, पवित्रता और दिव्यता, हमें वहां तक पहुंचना है। उसका बेस, फाउंडेशन सत्यता। जब स्वयं के बारे की सत्यता स्वीकार हो जाती है कि मेरा अनादि आदि स्वरूप सत्य है, शुद्ध है, पवित्र है, शांत है, मेरी रियलिटी ये है, जब ये फाउंडेशन आत्मा स्थिति की नींव साधना पक्की हो जाती है, फिर आगे का पुरुषार्थ सहज हो जाता है। अगर ये साधना कच्ची है तो सालों ज्ञान में चलने के बाद भी पूरा परिवर्तन नहीं होता है स्वयं। बाबा ने स्वयं को हम बच्चों को मैं कौन हूं, हम कौन है उसके बारे में कितने टाइटल्स दिए, कितने स्वमान जगाए। क्योंकि द्वापर युग में सबसे पहला कार्य भक्ति में गुरुओं द्वारा यही हुआ कि स्वमान को ही खत्म कर दिया गया। तुम गृहस्थी हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हें पार कर सकते। जन्मों के पुण्य हो तो तपस्वी बन सकते, तुम तो हमारी चरण में आओ, शरण में आओ, हमारी कृपा आशीर्वाद से तुम पार हो। तुम स्त्री हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप टोटल देखो स्वमान को ही खत्म कर दिया गया। बाबा ने आकर सबसे पहला कार्य स्वयं की जागृति दिलाई, स्व का ही परिचय दिया और स्वयं की श्रेष्ठता क्या है वो हमारे स्वमान हमें याद कराए, न सिर्फ याद कराए, बाबा ने उसी नजर से हमें देखा, हमें पाला। मुरली में देखते हो ना कितनी ऊंची नजर और भावना से बाबा हमारी पालना करते। ये चीजें स्व में शक्ति भरते। ये जो टाइटल स्वमान बाबा ने दिए हैं, ये ऐसे ही खुश करने के लिए नहीं दिए। कई बार हम आपस में कहते हैं बाबा देखो ऐसे ही फूल चढ़ा रहे, ऐसा नहीं है। भगवान को हमारी महिमा करने की क्या जरूरत। पर ये सत्यता है, जब व्यक्ति को स्वयं की सही महसूसता आती है, मैं कौन और मैं किसका, जब ये महसूसता शक्तिशाली है तो किसी की गलत नजर या भावना हमें हिला नहीं सकती, हमें गिरा नहीं सकती। इसलिए रोज साइलेंस में बैठकर अपनी सत्यता खुद ही खुद को रिवाइज करानी। स्व में स्थित हम साइलेंस में बैठकर क्या करते, सिर्फ डायरेक्ट बाबा से बात नहीं करते, पहले स्व की सत्यता में स्थित होते। कि मैं स्वयं ही शक्ति हूं, ज्योति हूं, चैतन्य, मैं स्वयं ही सत्य हूं, अविनाशी। ये महसूसता बात है। आध्यात्मिकता की शुरुआत स्वयं से हो। जब स्व में स्थित है तो और सभी प्रभावों से अपने आप को मुक्त रख सकते। बाबा ने कहा है ना कि वो भी अभी ही आया है मुरली में कि आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन क्या कहा है बाबा, आत्माभिमानी स्थिति निर्लेप स्थिति। अब आप देखिए सुबह आप उठते हैं तब से लेकर रात तक कितनों से मिलना होता है, आते जाते भले हम न भी पहचानते हों, बात भी ना करते हों, पर रास्ते में बाजार में आते जाते कितने लोग मिलते हैं। हरेक अपनी मनोस्थिति के साथ हमें मिलता है, हरेक के मन में अपने अपने विचार हैं, बातें हैं, कोई चिंता में, कोई भय में, कोई गुस्से में, कोई नाराजगी में, है ना। हरेक के मन में क्या हो सकता है, कलयुग के अंत में क्या हो सकता है। तो हरेक अपने विचारों के फोर्स वाइब्रेशन के फोर्स के साथ हमें मिलते हैं। दुख, दर्द, भय, चिंता, गुस्सा, अशांति और वो सबके विचारों के प्रवाह हमारे मन से टकराते हैं, प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी का दुख देखकर हम भी दुखी हो गए, किसी को बॉडी कॉन्शियस देखकर हम बॉडी कॉन्शियस हो गए, पर अगर हम अपनी आत्माभिमानी स्थिति में हैं, स्व में स्थित है, तो देखते हुए भी डिटैच रहे। इसलिए बाबा कहता है कि योग एक कवच, एक सेफ्टी लेयर है। आत्माभिमानी स्थिति में है तो वो बातें हमें प्रभावित नहीं करेगी, बल्कि बाबा हमें कहता है, आज भी बाबा ने कहा कि अब कौन सी सेवा करनी, महावीरों की सेवा कौन सी, यांत समय के हिसाब से अब कौन सी सेवा हमारे सामने आ रही। मनसा, हमारे संकल्पों में शक्ति, वो शक्ति स्थिति से आती। तो संगम युग की सबसे बड़ी सिद्धि और प्राप्ति अवस्था बनाना। हम देखें अपने आप को, क्योंकि हम संगम के अंत पर पहुंच चुके हैं, हम 2 साल से जुड़े हैं या 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से, या हरेक को जो भी अपने रोल अनुसार कहो, भाग्य अनुसार जिसको जो मौका मिला, पर संगम तो अंत में आ गया है ना, लग रहा है आप सबको? हाँ, संगम के अंत में तो हम पहुंच गए हैं। उस हिसाब से अपनी ये न्यारी प्यारी ऊंची शक्तिशाली आत्मस्थिति जरूरी है। और आप महसूस करते होंगे कि जैसे ही आप देह भान से न्यारे रहते हैं, ऑटोमेटिक सभी से साक्षी हो जाते। एक देहभान से न्यारे रहने का अभ्यास ड्रामा के हर दृश्य और पार्टधारी से हमें डिटैच साक्षी बना। भक्ति में इस मूल सत्य को न जानने के कारण उनको मेहनत हुई, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी है, वो दुनिया से दूर गए क्यों? वास्तव में देहभान से डिटैच होना। तो हम इस दुनिया के बीच होते भी कमल है, डिटैच। इस देह की दीवार से डिटैच। बाबा देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप, पहले देह से डिटैच, मैं इस देह में रहते देह से अलग बिंदु ज्योति। फिर बाबा ने इस दीवार को ही ट्रांसपेरेंट फरिश्ता लाइट स्वरूप और अल्टीमेट अपना मूल स्वरूप बिंदु शक्ति बीज। विज्ञान भी कहता है कि मैटर एनर्जी में जब चेंज होता है तो पहले लाइट स्वरूप में आता है, ये मैटर है। इससे बाबा ने इसको लाइट कर दिया, फरिश्ता है आप लाइट के स्वरूप में। अब हम ये नहीं चिंतन करते कि ये पांच तत्व का बना है, अब ये लाइट का बना है। पवित्रता, अन्न शुद्धि, नियम, इन दिनचर्या, संग, पहरवाइश, आहार विहार, सब कुछ बाबा ने चेंज करवाया। इससे बॉडी कॉन्शियसनेस कम हुआ, और आत्मभिमानी स्थिति का अभ्यास करते करते हम डिटैच हुए। और फिर अब बाबा ने कहा बाप समान संपन्न संपूर्ण स्टेज अव्यक्त कर्मातीत फरिश्ता, उसको लाइट कर दी। और लास्ट बिंदु ज्योति, और जब साक्षी है तो बाबा कहते हैं ना प्रभाव नहीं आएगा, बाहरी परिस्थितियां है ना प्रैक्टिकल वो दिन आ रहे, हिसाब किताब, और दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि शक्ति भरने वाले सोर्सेस कम हो रहे हैं। बाप दादा का पार्ट सिमट रहा है, दादियां हमारी गिनी चुनी, सीनियर्स हमारे बड़े हो गए, इन सब के द्वारा हमें कितनी शक्ति मिलती थी। अब है स्वयं की शक्ति से जीना और वापस चलना। अल्टीमेट तो आत्मा को अपनी ताकत से ही पार होना है ना। इन सब की पालना लेकर हमने अपने आप को कितना शक्तिशाली बनाया। पालना लेने में तो मजा ही आता है, पालना प्यार स्थूल सूक्ष्म वो तो अच्छा ही लगता है, पर उससे मैंने अपने आप को शक्तिशाली कितना बनाया। वहां आती है स्व की स्थिति। बाबा साकार में थे, जो भी यज्ञ निवासी थे, बाबा ने हर प्रकार की पालना खिलाया पिलाया, प्यार इसलिए कि दुनिया खींचे नहीं। पर दो रिजल्ट आए, कोई इस पालना प्यार लेते रहे पर वो कलयुगी आकर्षणों से मुक्त नहीं। जिन्होंने अपनी स्थिति बना ली पालना लेकर, उनको जब यज्ञ में बेगरी पार्ट आया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको दुनिया देह संबंध याद नहीं आए, वो यज्ञ में ही रहे उस हाल में भी। और जिन्होंने पालना लेते खुद को शक्तिशाली नहीं बनाया वो दुनिया में चले गए। हमें भी सिर्फ अंत तक पुरुषार्थी ही रहना है या स्थिति भी हमें बनानी है? हम बाप दादा की दादियों की स्थिति का ही वर्णन करेंगे या हम भी स्थिति बनाएंगे? तो मूल चीज है मेरा लक्ष्य क्या है। अच्छा, नंबर वन स्थिति बनाने वाला कौन, बनाई किसने? नंबर वन स्थिति किसने बनाई? ब्रह्मा बाबा ने। जो ब्रह्मा बाबा ग्रस्ती था, पारिवारिक जीवन में था ना, उनकी अपनी फैमिली थी ना। अक्सर हम क्या सोचते हैं, कि भई आपने तो सब छोड़ दिया है ना, आप लोग तो यज्ञ निवासी है, सेंटर निवासी है, हम ग्रस्त में दुनिया में हैं। परंतु नहीं, नंबर वन संपूर्ण कौन सी आत्मा बनी? बाबा बनी। जो ऑलरेडी संबंधों में थे, मधुबन में रहे, सेंटर में रहे या घर में रहे, स्थिति उनकी बनती है जो बनाना चाहता है। जो बनाना चाहता है, बेशक यहां मदद करने वाले फैक्टर्स ज्यादा हैं, पवित्र स्थान है, पवित्र वातावरण है, दादियों का संग है, यज्ञ भोजन है, रूहानी सेवा है, बनने में मदद करने वाले फैक्टर्स यहां ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी इन सब का लाभ लेकर बनने वाला वो ही बनता है जो खुद बनना चाहता है। हम सामान्य नहीं हैं, हम विशेष आत्माएं। भगवान की चुनी हुई साथी आत्माएं, सतयुगी आत्माएं, हीरो एक्टर्स, ये बाबा ने हम बच्चों को क्या क्या बताया है। पर मुझे साइलेंस में बैठकर अंतर्मुखी बनकर उसे महसूस करना। तो आप देखेंगे कि अपने आप आपको डिसीजन आएगा कि अब मुझे क्या करना है। तो मुझे क्या करना है, फिर किसी के कहने की जरूरत नहीं। बार बार कोई पुश करे तो मेरा पुरुषार्थ चले, वो जरूरत नहीं। पूछने की जरूरत नहीं, मूंझने की बात नहीं। इतना क्लियर रहेगा कि यथार्थ निर्णय होता रहेगा। कोई भी निर्णय लेते हैं तो पहले महसूस करना है कि मैं कौन हूं, उस हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, इस परिस्थिति में, इस बात में, इस कार्य में। और अब हम किसके बने हैं, प्रैक्टिकली बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, बहुत बड़े यज्ञ के हम सदस्य बने, डायरेक्ट भगवान से जुड़े। तो हमें ऑटोमेटिक क्लैरिटी रहेगी कि अब मुझे कैसे व्यवहार करना है, कैसे चलना है, कैसे सोचना है। हमने दादियों के संग ये चीज देखी, इनकी ये आत्माभिमानी स्थिति की, स्वस्थिति की महसूसता इतनी गहरी और पक्की है कि कोई भी चीज उसे आकर्षण में नहीं ले जाती, विस्तार में नहीं ले जाती। प्रैक्टिकली कितना भी कारोबार संभालते, प्रतिदिन कितनों से मिलते रहे हैं। पुरानों ने तो देखा होगा दादियों के जीवन को, पर वो सेकंड में अपने को समेट सकते थे। एकाग्र हो सकते, इतने वैरायटी रोल्स प्ले करते वन बाय वन, अभी अभी योग, अभी अभी मुरली क्लास, अभी अभी लोगों से मिलना, घर वालों के डिपार्टमेंट की बातें, खरीदी चीजें, पत्र, सेंटरों के समाचार, सेंटरों के प्रॉब्लम्स, मेहमानों से मिलना, फिर क्लास कराना, इतने अलग अलग रोल्स वन बाय वन। पर क्यों एक्यूरेट प्ले कर पाते? क्योंकि ये देह भान से न्यारे रहने का अभ्यास। अपने आप कई बार हम देखते कि कुछ चिंतन करने के भी मार्जिन नहीं रहते, पर स्वामी स्थित और बाबा से अटैच तो डायरेक्ट टचिंग भी आती, नए थॉट्स भी आते। बाबा ने कहा स्व में स्थित है, स्व में सेट है, तो बाप रेस्पॉन्सिबल है। अपसेट है तो बाप साक्षी। क्योंकि बाबा मदद देगा तो भी हम ले नहीं सकेंगे, है ना? रिसीव तो तब करेंगे ना जब स्व में स्थित। जरूरत है थोड़ा अंतर्मुखी बनना, डिटैच होना, अभ्यास कर। तो आसपास की कितनी भी हलचल हमें प्रभावित नहीं करेगी। मैं आत्मा अचल हूं और मुझ आत्मा के आसपास जो कुछ है, शरीर, प्रकृति, संबंध, संसार, ये सब हलचल है, परिवर्तनशील। अचल कौन है? मैं आत्मा अचल हूं, मैं स्वयं अचल हूं। तो स्व में स्थित है तो कोई हलचल का प्रभाव नहीं। माना एक सत्य में इतनी शक्ति है कि हमें उसे सिर्फ बार बार महसूस करने की जरूरत है। खुद में ही अनुभव होता रहे। व्यक्तिगत रूप से अभ्यास करें, मुरली क्लास भी अभ्यास करने का बहुत अच्छा साधन है, है ना? जैसे बाबा के तरफ से लाइव कमेंट्री है ना, एक एक महावाक्य बाबा का किस लिए है? स्वामी स्थित होने के लिए। और यही मौका है संगम युग। बाकी और कुछ और जन्म में भी हम प्राप्त कर सकेंगे, है ना? दुनिया की दृष्टि से भौतिक, सांसारिक, दैहिक, दुनियावी रूप से और कुछ भी पाना और जन्म में भी मौका है। पर अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई को पाना वो सिर्फ संगम युग में, वो सिर्फ अभी। कुछ मूल शक्तियों का रोज पाठ पक्का करना, वही हम अब अभ्यास करेंगे मिलकर के। पर उसकी रोज रियलाइजेशन बहुत जरूरी। जब हम समझते हैं कि मैं योगी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं तपस्वी हूं, बेहद की वैरागी हूं, ऑटोमेटिक हमें समझ में आता है कि तो मेरा उठना बैठना बोलना चलना देखना सोचना करना कैसा होना चाहिए। तो बाकी सबके लिए कोई मेहनत करने की बात नहीं है, सिर्फ स्वयं को जानना समझना स्वीकार करना स्थित होना गहराई से महसूस करना और स्थित रहना। तो बाकी जो परिवर्तन है वो ऑटोमेटिक है। तो हम अभ्यास करेंगे, कुछ खड़े होकर करेंगे ताकि आप कब से बैठ के थक गए होंगे, फिर कुछ बैठ के भी करेंगे, खड़े हो जाएंगे। अपनी तबीयत अनुसार जो जब चाहे बैठ जाए अपनी तबीयत को देखकर। पहला अभ्यास स्वयं में मस्त हो जाए। हो जाए आसपास की व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, साक्षी हो जाए स्वयं में मगन हो जाए मैं स्वयं दिव्य ज्योति चैतन्य शक्ति शरीर की विचित्र गुफा में मस्तक के आसन पर विराजमान मैं जगमगाती चैतन्य ज्योति। राइट साइड घूम जाइए, राइट साइड घूम जाइए। जैसे ही देहभान से न्यारी स्वयं की प्यारी आत्मस्थिति में मैं स्थित होती हूँ, मैं इस वर्ल्ड ड्रामा के हर दृश्य से साक्षी बन देख सकती हूँ। जैसे ही मैं आत्मा साक्षी दृष्टा बनती हूँ, बाह्य सभी प्रभावों से मुक्त बन जाती। मुझे स्वयं से ही आनंद का अनुभव होता है। राइट साइड घूम जाए, स्वामी स्थित होते ही मेरा नेचुरल अटेंशन बाबा की ओर जाता है। इस दुनिया से डिटैच बाबा से अटैच, मैं हर क्षण बाबा के साथ और छत्र छाया का अनुभव करती हूँ। इसी पोजीशन में बैठ जाए, उसी तरफ मुड़ो। बाबा में मगन हो जाए, मैं याद करती हूँ और बाबा मेरे साथी बन जाए। एक गुप्त साथ, एक गुप्त सहारा हर क्षण मैं महसूस करती हूँ। मेरी
सर्व संबंध। मेरी सर्व प्राप्तियां बाबा से, बाबा मेरा सर्वस्व है, बाकी सब कुछ निमित्त मात्र है। संगम युग की अलौकिक सौगात है, बाबा से मिलन मनाना, राइट साइड घूम जाए, इस दुनिया में रहते हुए स्वयं के पार्ट में ट्रस्टी बनना, बाबा मेरा मालिक है, मैं उनका ट्रस्टी बन उनके तरफ से निमित्त बन उनका इंस्ट्रूमेंट बन पार्ट प्ले कर रहे, बाबा की श्रीमत अनुसार हर कर्म करना और बाबा में समा जाना। पार्ट प्ले करते समय इस दुनिया में रहते कमल बनना, और फिर वतन वासी बन जाना, अव्यक्त वतन में अव्यक्त बाप दादा के संग अव्यक्त फरिश्ता बनना, या मूल वतन में बिंदु बाबा के संग बिंदु बन रहना, पार्ट प्ले किया और और वतन वासी बन जाए। जहां बाबा वहां मैं, राइट साइड घूम जाए। दाता बाबा के बच्चे मुझे मास्टर दाता बन सबको देना है। बाबा ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे भरपूर किया है। बाबा ने सद्ज्ञान दिया, स्वमान जगाया, रूहानी शान में स्थित किया, ऊंचा स्थान दिया, अब मुझे सबको देना है। ये अलौकिक संपदा दिव्य अनुभूतियां मुझे सबको बांटनी है। इस अंतिम जन्म के देह संबंधियों को साथियों और मित्रों को विश्व की आत्माओं को अलौकिक परिवार को समस्त पशु पंछी प्रकृति जगत को देना है। शांति सुख आनंद प्रेम।
ओम शांति। हम सभी आदरणीय मीठी गीता दीदी जी का एक हाथ की ताली बजाकर बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। दीदी ने जो इस भट्टी का लक्ष्य है स्वस्थिति, उसकी अनुभूति, तो उसका महत्व एक एक कोना उसका बताया, साथ साथ कितनी शक्तिशाली अनुभूति हम सभी ने की। तो ऐसा हम बार बार अभ्यास करके बाबा की आशाओं को, दादियों की आशाओं को, स्वयं के जीवन को और रूहानी पालना करने वाली दीदी को भी आश्वस्त करते हैं कि जरूर हम ऐसा लक्ष्य प्राप्त करके ही रहेंगे, स्वस्थिति महान बना के ही रहेंगे। आदरणीय दीदी जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।